नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। असम में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 72% मतदान, वोटों की गिनती बुधवार को। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा, मंगलवार के मतदान में अगर ब्रेग्जिट समझौता अस्वीकार हुआ तो देश में अनिश्चितता की स्थिति के आसार। खेलो इंडिया युवा खेल 9 जनवरी से पुणे में। और हॉकी विश्व कप में जर्मनी मलेशिया को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। असम में पंचायत चुनाव के दूसरे दौर में आज 72% मतदान हुआ। राज्य के चुनाव आयुक्त हरेंद्र नाथ बोरा ने गुवाहाटी में बताया कि मतदान प्रतिशत के और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों से आंकड़े मिलना अभी बाकी है।
As per reports received from the Deputy Commissioners and Sub-Regional Officers,
उपायुक्त और उपमंडलीय अधिकारियों से मिली रिपोर्ट के अनुसार 5 बजे तक 72% से अधिक मतदान हुआ है। कुछ मतदान केंद्रों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा।
श्री बोरा ने बताया कि कुछ बूथ पर फिर से मतदान कराना होगा। मतगणना अगले सप्ताह बुधवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, असम गण परिषद और AIUDF समेत सभी राजनीतिक दलों ने इस चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों की मंगलवार को होने वाली मतगणना के दौरान आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही 12 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे के हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का समय भी बढ़ाया गया है। 12 बजे का अंग्रेजी समाचार बुलेटिन और 12:05 का हिंदी बुलेटिन 5 मिनट की बजाय 10 मिनट का होगा। इसी तरह दोपहर का मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन की अवधि भी 15 मिनट बढ़ा दी गई है। अंग्रेजी बुलेटिन 2 बजे से 2:30 तक और दोपहर समाचार 2:30 से 3 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। शाम को 6 बजे भी अंग्रेजी और हिंदी बुलेटिन 10-10 मिनट के होंगे। इसके अलावा चुनावी नतीजों की ताजा जानकारी देने के लिए मंगलवार सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक एक विशेष समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 से 10:30 तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम भी प्रसारित होगा, जिसमें आकाशवाणी के आइजोल, रायपुर, भोपाल, जयपुर और हैदराबाद के केंद्रों को भी जोड़ा जाएगा।
जनादेश।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम
मंगलवार 11 दिसंबर 2018।
संतुलित और सटीक विश्लेषण सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक।
विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:30 से 10:30 तक।
सुनना ना भूले आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एनडीए सरकार देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है, जबकि कांग्रेस नेता जांच एजेंसियों को धमकियां देने में व्यस्त हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा,
रॉबर्ट वडेरा और उनके कंपनी पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के नेता एक नहीं अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से देश की उन एजेंसीज पर जो देश में अच्छा काम कर रही है उसको गालियां दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, ये धमकी चलने वाली नहीं। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ पक्का इरादा लेकर ये सरकार काम कर रही है।
श्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लड़ने का अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए तेजी से कार्य करेगी। श्री हुसैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ छापामारी के कांग्रेस के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा। 8 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में 20 बैठकें होंगी। इस दौरान राज्यसभा में 8 और लोकसभा में 15 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा। इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा भी बैठकें करने की संभावना है। लोकसभा में कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट करेंगी। संसद सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनलों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो।
सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है?
केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए।
पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं।
वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं।
बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
अरे भाई तुषार, व्हाट्स हैपनिंग?
अरे भाई, अपने बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका फायदा बाद में हमें ही तो मिलेगा।
अरे मुझे भी बता यार ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में।
बस मेरी तरह अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा कर दें।
उससे क्या होगा भाई?
तुझे पता है हमारे ही इनकम टैक्स से तो विकास को नई गति मिलती है, और जो हमारे गली मोहल्ले से लेकर देश के कोने कोने तक फैलती है, और उसका फायदा किसको मिलता है? हमें ही तो।
ये बात तो है भाई, ईमानदारी से दिए इनकम टैक्स का फायदा हमें ही तो मिलता है।
तो आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण। समय पर टैक्स देकर करें अपना योगदान। याद रखें, 15 दिसंबर 2018 एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त को जमा करने की अंतिम तारीख है।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके मुजगुंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ये आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के हैं, इनमें से 2 स्थानीय और 1 पाकिस्तान का है। पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ में सेना का 1 जवान और 3 नागरिक भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया है कि ये आतंकी श्रीनगर में सुरक्षा शिविर पर एक बड़े आत्मघाती हमले की योजना बना रहे थे।
ये एनकाउंटर सुबह ही खत्म हुआ है, जो पिछली रात से चल रहा था। इसमें 3 आतंकवादियों के छुपे होने की इत्तला थी, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें 3 आतंकी जो है मारे गए हैं, उनकी पहचान को सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इत्तला है उसके मुताबिक एक उन्हें फॉरनर हो सकता है और लोकल मिलिटेंट है।
इस बीच राज्य पुलिस ने आज दुर्दांत आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर के करीबी सहयोगी रियाज अहमद को किश्तवाड़ से गिरफ्तार कर लिया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि अहमद श्रीनगर के परमपुरा इलाके में आतंकवादी गतिविधियां करता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर के अपर पुलिस अधीक्षक रईस अख्तर का तबादला कर दिया है। गाजियाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्र को उनकी जगह भेजा गया है। इस महीने की 3 तारीख को कथित गौ हत्या को लेकर बुलंदशहर में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों का ये 4th तबादला है। इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई थी। इस सिलसिले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मामले का मुख्य संदिग्ध और सेना का जवान जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू भी शामिल है, जिसे सेना ने कल रात राज्य के विशेष कार्यबल को सौंप दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति की गोरखपुर की ये पहली यात्रा है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत में शहर को अच्छी तरह से सजाया संवारा गया है। राष्ट्रपति कल गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वह महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद के 1 सप्ताह चले समापन समारोह में भी भाग लेंगे। वर्ष 1932 में स्थापित यह परिषद गोरखपीठ द्वारा संचालित है। इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में परिषद का बड़ा महत्व है। वर्तमान में परिषद के 44 संस्थाएं हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी संस्थान शामिल हैं। मुल्तान सिंह यादव, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
अमर,
क्या हुआ?
पापा को हार्ट अटैक आया। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी?
एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल।
यार ये एम आधार चलेगा?
अरे दौड़ेगा दौड़ेगा,
चल चल फटाफट
दबा के जा। जी पाजी,
ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, वो भी मोबाइल पे?
हाँ पाजी मिल जाता है।
यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
तो अभी सोच लो,
फायदे में रहोगे पाजी।
एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी।
ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने संसद सदस्यों को आगाह किया है कि अगर वे संसदीय मतदान में ब्रेक्जिट समझौते को अस्वीकार कर देते हैं तो इससे देश में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है और चुनाव कराने की नौबत भी आ सकती है। प्रधानमंत्री मे ब्रेक्जिट योजना को बचाने के प्रयास कर रही हैं। मंगलवार को इस समझौते पर ब्रिटिश संसद में मतदान होना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को अस्वीकार कर सकती है। शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के मामले में कल लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख 62 वर्षीय विजय माल्या पर भारत में 9000 करोड़ रुपए की धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। भारतीय अदालत ने उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। पिछले साल अप्रैल में भारत प्रत्यर्पण करने के लिए विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया था और वो तभी से जमानत पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अधिकारियों से आतंकवाद और उग्रवाद की नई चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने का आह्वान किया। आज हैदराबाद में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी NISA के दीक्षांत परेड में उन्होंने कहा कि CISF VIP सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और विमानन सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज सुबह अबुधाबी के लिए पहली उड़ान को रवाना किया। इस अवसर पर श्री प्रभु ने कहा कि कन्नूर हवाई अड्डे से केरल में व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य में नए जिले शी योमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। ये जिला राज्य के पश्चिमी सियांग जिले को विभाजित कर बनाया गया है। श्री खांडू ने कहा कि सियांग का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा और दुर्गम होने के कारण इसे विभाजित कर नया जिला बनाया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल अगले साल 9 जनवरी से 20 जनवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन खेलों में 9000 से अधिक युवा भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार से विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी इन खेलों में हिस्सा लेंगे।
अब ये दूसरा साल होने वाला है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से, अब ये बढ़कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने इसको बना दिया है। दो कैटेगरीज होंगी मुकाबले की, एक अंडर 17 जैसे पिछले साल हुई थी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में और दूसरी अंडर 21, तो इसको हमने यूथ गेम्स नाम दे दिया है। पिछले साल जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए थे उसमें तकरीबन 3,500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा था।
एडिलेड में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 323 रन के लक्ष्य के जवाब में दूसरी पारी में 4 विकेट पर 104 रन बना लिए थे। शॉन मार्श 31 और ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आर अश्विन और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए हैं। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 307 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा ने 71 और अजिंक्य रहाणे ने 70 रन की पारी खेली। भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में जर्मनी ने मलेशिया को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक अन्य मैच में पूल डी में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया है। भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 72% मतदान हुआ है। वोटों की गिनती बुधवार को होगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा है कि मंगलवार के मतदान में अगर ब्रेक्जिट समझौता अस्वीकार हुआ तो देश में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है। खेलो इंडिया युवा खेल 9 जनवरी से पुणे में होंगे और हॉकी विश्व कप में जर्मनी मलेशिया को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।